SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय हीट वेव के चलते उत्पादन में आई कमी और बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। अब केवल वही निर्यातक गेहूं निर्यात कर पाएंगे जिनके पास इस अधिसूचना के जारी होने से पहले ही लेटर ऑफ क्रेडिट आ गए थे। भारत के इस निर्णय की G7 समूह के देशों ने निंदा की है। शनिवार को स्टुटगार्ट में G7 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में जर्मनी के कृषि मंत्री जेम ऑस्टेमेयर ने कहा कि इस प्रतिबंध का सीधा असर नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों पर पड़ेगा जिन्हें खाद्य की सख्त ज़रूरत है और वे भारत से G20 सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने का आह्वान करते हैं।
Zuschlägt und der Exportstopp betrifft Länder wie Bangladesch und Nepal, die dringend darauf angewiesen sind. Wir empfehlen auch, dass eine konkrete Beschluss hier das Thema beim Treffen der G7 Staats- und Regierungschefs zu adressieren, bei dem Indien bekanntermaßen zu Gast sein wird. Wir appellieren aber auch gemeinsam aus Stuttgart an Indien, seiner Verantwortung als G20-Mitglied gerecht zu werden.
इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि भारत की खाद्य सुरक्षा, किफ़ायती खाद्यान्न सुनिश्चित करने और बाज़ार की अटकलों से निपटने के लिए गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत आपूर्तिकर्ता, पड़ोसियों और कमज़ोर देशों की ज़रूरतों सहित सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा। इस पूरे प्रकरण में हैरानी की बात यह है कि दो ही दिन पहले मोदी सरकार ने 10 मिलियन टन गेहूं के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था और इसके लिए 9 देशों में व्यापार मंडल भेजने का भी निर्णय लिया था। सरकार द्वारा एकाएक लिए गए इस यू टर्न पर किसानों, गेहूं के एक्सपोर्टर्स और व्यापारियों ने नाराज़गी जताई है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इसे किसानों के खिलाफ लिया गया फैसला बताया।
I presume that it is because the central government has failed to procure enough wheat. It's not that wheat production has come down. It's more or less the same. In fact, it may be marginally more. Banning export of wheat is an anti-farmer measure. It deprives the farmer of reaping the benefit of higher export prices. It is an anti-farmer measure, and I'm not surprised. This government has never been very friendly to the farmer.
भारतीय जनता पार्टी की लगातार बढ़ती ताकत के समक्ष अपनी लगातार चुनावों में हार के कारण आंकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर में अपने हालात के साथ साथ देश की स्थिति का भी जायज़ा लिया। इस दौरान चुनिंदा वरिष्ठ और युवा नेताओं ने कांग्रेस की स्थिति, संगठनात्मक कमजोरियों, विदेश नीति, आर्थिक स्थिति, जनता से संवाद, अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन आदि कई विषयों की समीक्षा की। इस बैठक में कांग्रेस ने अपने असंतुष्ट वरिष्ठ नेताओं के सुझाव शामिल कर कई बड़े निर्णय लिए, जैसे कि अगले 90 से 180 दिनों में देश भर में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर सभी रिक्त नियुक्तियां पूरी कर जवाबदेही सुनिश्चित करना और युवाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित करना। अपने समापन भाषण में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया।
We will launch the national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra beginning on Gandhi Jayanti this year. The yatra is to strengthen the bonds of social harmony that under severe stress and to preserve the foundational values of our constitution that are under assault and also to highlight the day-to-day concerns of crores of our people.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ शब्दों में पार्टी के संगठनात्मक तौर पर कमजोर होने और जनता से कटे होने की बात मानी। उन्होंने भाजपा से विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेसी नेताओं से कहा कि इस लड़ाई के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है।
हमारी जिम्मेदारी जो विचारधारा की लड़ाई है उसको लड़ने की है और जनता के साथ खड़े होने की है। आज के समय में इंटरनल फोकस से हमारा काम नहीं होने वाला है, हमारा फोकस एक्सटर्नल फोकस होना पड़ेगा। जनता की ओर हमें देखना पड़ेगा, जनता के पास हमें जाना पड़ेगा, और सिर्फ हमारे लिए नहीं देश के लिए हमें जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए। जो उनकी समस्या है उनको समझना चाहिए, और जो हमारा पहले उनके जनता के साथ कनेक्शन होता था, जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस कनेक्शन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा।
लेकिन चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस को एक तगड़ा झटका भी लगा जब पार्टी के पूर्व पंजाब प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की।
सुनील की गैरत, सुनील का ऑनर, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन आपने नोटिस भेज दिया, मेरे तो आपसे उसी दिन संबंध विच्छेद हो गया। मैंने पहले भी जिस दिन नोटिस आया था उस दिन कहा था गुड लक टू कांग्रेस पार्टी एंड टुडे अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचेंगे। इस यात्रा को चीन के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के बारे में विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने जानकारी दी।
इन देयर बायलैटरल टॉक्स द टू प्राइम मिनिस्टर्स विल पिक अप फ्रॉम वेयर दे लेफ्ट ऑफ इन दिल्ली जस्ट लास्ट मंथ। सम अप द विजिट विल वन ऐड टू द पॉजिटिव मोमेंटम इन आवर बायलैटरल टाइज जनरेटेड बाय हाई लेवल एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग बाय द लास्ट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर देवबा टू इंडिया इन अप्रैल। And two, the visit also reaffirms our commitment and demonstrates the priority that government of India attaches to the neighborhood.
और आइए अब सुनते हैं खेल जगत के समाचार। भारत ने रविवार को बैडमिंटन की दुनिया में तहलका मचाते हुए 14 बार के विजेता इंडोनेशिया को हराकर टॉमस कप में जीत हासिल की। शनिवार को सेमीफाइनल्स में डेनमार्क जैसी सशक्त टीम को 3-2 से हराने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हो गए थे, जिसकी बानगी रविवार को इंडोनेशिया के खिलाफ देखने को मिली। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पहले तीनों मुकाबले जीत लिए और 5 मैचों के फाइनल्स में इंडोनेशिया को आसानी से 3-0 से हरा दिया। भारतीय टीम के सबसे युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पहला सिंगल्स खेलते हुए इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग को 3 सेटों में 8-21, 21-17, 21-16 से परास्त किया। पहला डबल्स मैच खेलते हुए भारत की सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और केविन संजय की जोड़ी को 3 सेटों में 18-21, 23-21, 21-19 से हराकर भारतीय टीम को जीत के द्वार पर खड़ा कर दिया। अब सबकी आंखें भारतीय टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी और पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 किदाम्बी श्रीकांत पर लगी थी। मैच के शुरुआत में ही पता चल रहा था कि श्रीकांत ठान कर आए हैं। उन्होंने जोनाथन क्रिस्टी के खिलाफ अपना मैच सीधे सेटों में 21-15, 23-21 से जीत भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। टॉमस कप जीतने के बाद बात करते हुए श्रीकांत ने जीत का श्रेय कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ समेत पूरी टीम को दिया।
Required today, Lakshya started off really well, you know, with that point to India. I think that really kind of, removed, say, some pressure from the first doubles pair. And I think when they won their match, you know, I didn't really have to do anything. I only had to just go out and enjoy. That's it, you know. So the credit goes to, you know, the whole team. You know, it's the players, coaches, support staff, you know, all of them.
इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।